आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। पूरे मुल्क में लोकसभा इलेक्शन से मुतालिक जोश खरोश उरूज पर। सियासी जमातें पहले तीन मरहलों के बाद चौथे मरहले में भी वोटरों को अपनी जानिब रागिब करने के लिए जी तोड़ कोशिशों में मसरूफ। इंतखाबी मुहिम के तहत कश्मीर वादी में सियासी जमातों के जलसे जुलूस और रैलियां जारी। आज मिने हज की रवानगी से मुतालिक शेड्यूल मुश्तहिर। श्रीनगर के बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से पहला काफिला कल होगा मदीना तायबा के लिए रवाना। और रूसी फौज में भारतीय शहरियों की जाली भर्तियों से मुतालिक फ्रॉड का पर्दाफाश। सीबीआई ने चार मुलजमान को किया गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क में पार्लियामानी इंतखाबात के तीसरे मरहले के पुरअमन और एहसन इनेकाद के बाद तमाम तर तवज्जा इंतखाबात के बाकी मांदा मरहलों की तरफ मरकूज हुई है। जैसे कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि कल तीसरे मरहले के चुनाव के दौरान मजमूई तौर पर 64.58% राय दहिंदगान ने अपने हक की राय दी का इस्तेमाल किया। कल 10 रियासतों और एक यूटी में 93 पार्लियामानी हल्कों में वोट डाले गए और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के बावजूद जिंदगी के मुख्तलिफ तबका हाय फिक्र से ताल्लुक रखने वाले वोटरों ने अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करके उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला वोटिंग मशीन में बंद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक आसाम में सबसे ज्यादा यानी 81.61% वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया जबकि बिहार में सबसे कम यानी 58.18% वोटिंग दर्ज की गई। कल के मरहले के इख्तिताम के बाद अब 20 रियासतों और यूटीज में पार्लियामानी इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो चुका है और इसके साथ ही मजमूई तौर पर 2024 के आम इंतखाबात के लिए 283 पार्लियामानी हल्कों पर इंतखाबात मुकम्मल हुए। तीसरे मरहले में कल 1331 उम्मीदवार मैदान में थे जिनमें बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह, मनसुख मंडाविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद जोशी, शिवराज सिंह चौहान, विश्वराज भमुई, कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव और एनसीपी शरद पवार ग्रुप के सुप्रिया सोले शामिल हैं। इधर पार्लियामानी इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद अब बाकी मरहलों की चुनाव मुहिम में हर गुजरते दिन के साथ तेजी आ रही है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आला लीडर और नामजद उम्मीदवार जगह जगह पर चुनाव रैलियों और जलसों का इनेकाद करके राय दहिंदगान को अपनी जानिब रागिब करने में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं कर रहे हैं। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वारंगल तेलंगाना में अपने पार्टी उम्मीदवार के हक में चुनाव जलसे का इनेकाद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क रंगों की बुनियाद पर लोगों में फर्क को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कांग्रेस की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बीजेपी नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पर अमल पैरा है जबकि कांग्रेस और बीआरएस फैमिली फर्स्ट की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी पॉलिसी की वजह से कांग्रेस ने साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव को नजरअंदाज किया जबकि एनडीए ने उनकी इज्जत अफजाई करते हुए उन्हें भारत रत्न से नवाजा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो तरक्की के मुद्दे पर अपना वोट दें और उन लोगों को दो टोक जवाब दें जो तेलंगाना के मफादात को जख्म पहुंचाना चाहते हैं। दरियासना एक और बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के उन इल्जाम को मुस्तरद किया जिसमें कांग्रेस ने कहा था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बर्बाद किया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में निर्मला सीतारमन ने कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दौरान पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स फरोग पा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरबराही वाली यूपीए हुकूमत के दौरान पीएसयूज को मुश्किल से दोचार होना पड़ा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ साथ बिजली और लॉजिस्टिक्स पर तवज्जो दे रही है जिससे रेलवे, सड़क, राबितों, बिजली और दीगर शोबों को काफी फायदा हुआ है। लोकसभा इलेक्शन के हवाले से चौथे मरहले के तहत 13 मई को होने वाली पोलिंग के लिए कश्मीर वादी में भी सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी अहम पार्टियां जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी खासतौर से काबिल जिक्र हैं, वोटरों को रागिब करने के लिए जगह जगह जलसे जुलूस और रैलियों का इनेकाद कर रही हैं। श्रीनगर के पार्लियामानी हल्के में एनसी, पीडीपी और अपनी पार्टी के दरमियान कांटे की टक्कर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज जनूबी कश्मीर के त्राल, ईदगाह श्रीनगर और शुमाली कश्मीर के कुपवारा इलाकों में इंतखाबी जलसे मुनाकिद हुए, जिस दौरान पार्टी के सीनियर लीडरों डॉ फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने लोगों से खिताब किया और इलेक्शन में शामिल पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए वोट देने की अपील की। जम्मू कश्मीर में पार्लियामानी इंतखाबात के एहसन और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। एक तरफ चुनाव पर मामूर अमले को लाजमी तरबियत से हमकिनार किया जा रहा है तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ जिलों में स्वीप के तहत बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया जा रहा है, जिनके दौरान वोटरों, बिलखसूस पहली मरतबा अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने वालों और खवातीन में वोट की अहमियत के ताल्लुक से बेदारी पैदा की जाती है। वाजह है कि जम्मू कश्मीर की श्रीनगर पार्लियामानी निशस्त पर चौथे मरहले के तहत 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इस हलके में 17 लाख से जायद राय दहिंदगां 24 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला वोटिंग मशीन में बंद करेंगे। बारामूला हलके में 20 मई को पांचवें मरहले के तहत चुनाव अमल में लाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने नई दिल्ली में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंटों की सहूलियत के लिए राजधानी के मुख्तलिफ इलाकों में पोलिंग मराकज कायम किए हैं ताकि ये माइग्रेंट आज खुद इलेक्शन के दिन अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। ये पोलिंग मराकज कश्मीर रेजिडेंट कमीशन, कश्मीर किसानगढ़, अरवचन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिपरावत में कायम किए गए हैं। अरबल के सियासी मकाम पर आज स्वीप के तहत वोटिंग से मुतालिक एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद इलेक्शन में लोगों की शिरकत की अहमियत को उजागर करना था। प्रोग्राम का एहतमाम जिला इलेक्शन ऑफिस कुलगाम ने किया था और इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कुलगाम जिले में 25 मई को लोकसभा इलेक्शन के छठे मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी ने इस साल सफर महमूद पर रवाना होने वालों के लिए रवानगी का शेड्यूल जारी किया है। तफसीलात के मुताबिक आजमीन कल से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। पहली परवाज से रवाना होने वाले आजमीन से कहा गया है कि वो सुबह 8:30 बजे, जबकि दूसरी परवाज से रवाना होने वाले आजमीन से कहा गया है कि वो सुबह 11 बजे हज हाउस बेमिना पहुंच जाए। इस हवाले से पेश है हमारे नुमाइंदे की ये तफसीली रिपोर्ट।
श्रीनगर बैन अलावी हवाई अड्डे से आजमीन हज की सऊदी अरब के लिए रवानगी का सिलसिला कल से शुरू होगा और ये अमल 25 मई तक जारी रहेगा। इस साल जम्मू कश्मीर हज कमेटी की वसादत से यूटी के लगभग 7,800 आजमीन फरीज हज अदा करेंगे। हज कमेटी के मुताबिक आजमीन को लेकर रोजाना 2 परवाजें बराह रास्त मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ करेंगी। आजमीन की सहूलत के लिए हज हाउस बेमिना, श्रीनगर हवाई अड्डे के साथ साथ मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज्जमा में भी हर तरह के इंतजाम को खत्म शक्ल दी गई है, जिसमें खासतौर से ट्रांसपोर्ट और रिहायश की सहूलियात काबिल जिक्र हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि आजमीन को ये मुकद्दस तरीन फरीजा अंजाम देने में किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अहम इस जमीन में आजमीन से कहा गया है कि वह हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से वजह किए गए रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करें। आजमीन की राहत रसानी और रहनुमाई के लिए जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी पेश है। कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉ शुजात अहमद कुरैशी ने शोबे खबर को रवा बरस के हज इंतजाम के बारे में बताया।
जो हजरत ग्राम जाने का सिलसिला से नगर एम्बारकेशन से इंशाल्लाह कल शुरू होगा 9 मई से। ये 25 मई तक फ्लाइटें होंगी हमारी, लगभग 25 फ्लाइटें हैं जो नगर एम्बारकेशन से जाएंगी, जिसमें 6,850 हजरत ग्राम नगर एम्बारकेशन से जाएंगे, जिसमें 375 जो है 50 यूपी के। इसके अलावा हमारे तकरीबन 450 के करीब जो हमारे हजरत ग्राम है वो अदर एम्बारकेशन से जा रहे हैं। तो पहली फ्लाइट जो होगी वो इंशाल्लाह 1:30 बजे होगी हजरत ग्राम को हज हाउस। 8:30 बजे जो पहली फ्लाइट के हैं 5109 की जो फ्लाइट है उसकी हजरत ग्राम हमें 8:30 बजे रिपोर्ट करेंगे और जो दूसरी फ्लाइट है 5209 वो हजरत ग्राम 11 बजे हज हाउस रिपोर्ट करेंगे। हजरत ग्राम से गुजारिश है कि वक्त पे आए और अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक करते रहें। जो अफवाहें हैं, जो ऐसे ही कुछ लिस्टें बन के कहीं आ जाती हैं, उन पर भरोसा न करें। जो हज कमेटी की वेबसाइट से नोटिफिकेशन है उस पर भरोसा करें, उसी के हिसाब से अपने टाइम पे जिस टाइम पे कहा जाता है उसी टाइम पे हज हाउस रिपोर्ट करें।
بہرحال ہم امید کریں گے کہ اس سال حج بیت اللہ پر روانہ ہونے والے عازمین کا سفر محمود آسان ہو اور انہیں حج مبرور نصیب ہو. ہم دعا گو ہیں کہ آنے والا حج عالم انسانیت کی بقا بالخصوص جموں کشمیر میں امن امان ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے. شعبہ خبر آکاشوانی کے لیے میں سہیل احمد.
بی جے پی نے آج کانگریس لیڈر سیم پتروڑا کے ہندوستانی کے بارے میں ان کے مبینہ قابل اعتراض تبصروں پر تنقید کی. نئی دلی میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے پارٹی کے ترجمان سدھانشو ترویدی نے کہا کہ کانگریس لیڈر نے بھارت کی ثقافت اور شناخت کے ساتھ ساتھ ملک کے لوگوں کی توہین کی ہے. انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے لوک سبھا الیکشن آگے بڑھ رہا ہے کانگریس بے نقاب ہو رہی ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس کا پورا نظریہ لوگوں کو تقسیم کرنے کا ہے. پارٹی کے ایک اور لیڈر اور مرکزی وزیر راجیو چندر شیکھر نے الزام لگایا کہ پتروڑا کا تبصرہ کانگریس کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے. قبل ازی پتروڑا نے ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے ہندوستانیوں کا چینی، افریقی، عرب اور گوروں سے موازنہ کیا تھا. سی بی آئی نے روسی فوج میں لڑنے کے لیے بھارتی شہریوں کی سمگلنگ سے متعلق ایک معاملے میں چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. سی بی آئی نے کہا کہ اس نے ملک بھر میں چل رہے انسانی سمگلنگ کے ایک بڑے نیٹورک کا پردہ فاش کیا ہے جو بیرون ملک منافع بخش ملازمتوں کے بہانے بھولے بالے نوجوانوں کو نشانہ بنا رہا ہے. گرفتار ملزمان میں دو کا تعلق کیرالا جبکہ دو دیگر کا تعلق ممبئی سے بتایا گیا ہے. ایجنسی نے کہا کہ یہ سمگلر ایک منظم نیٹورک کے طور پر کام کر رہے ہیں تاکہ بھارتی شہریوں کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے اور ان کے مقامی ایجنٹوں کو روس میں بہت زیادہ معاوضے کی نوکریوں کے لیے راغب کیا جا سکے. سی بی آئی کے مطابق سمگل کیے گئے ہندوستانی شہریوں کو جنگی کرداروں کی تربیت دی گئی اور ان کی خواہش کے خلاف روس یوکرین وار زون میں فرنٹ بیسس پر تعینات کیا گیا. راجوری ضلع میں حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی زیارت گاہ پر آج ائمہ مساجد کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس کی صدارت وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان اندرابی نے کی. کانفرنس میں ضلع بر سے تعلق رکھنے والے سرکردہ ائمہ حضرات نے شرکت کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. اپنی تقریر میں ڈاکٹر اندرابی نے نوجوانوں میں صوفیوں کی تعلیمات سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے ائمہ حضرات کے رول کو اجاگر کیا. آج خون میں خرابی سے متعلق بیماری تھیلیسیمیا سے بچاؤ کا عالمی دن ہے. اس دن کا مقصد مذکورہ بیماری اور اس سے بچاؤ و علاج کے بارے میں لوگوں میں شعور اجاگر کرنا ہے. یہ ایک خون کی جینیاتی خرابی ہے جو جسم میں ہیموگلوبین کی پیداوار کو متاثر کرتی ہے. اس دن کا مقصد جینیاتی جانچ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تھیلیسیمیا کے شکار لوگوں کی مدد کرنا اور سب کے لیے مساوی اور معیاری علاج تک رسائی کی وکالت کرنا ہے. جے اینڈ کے یتیم فاؤنڈیشن کی طرف سے آج بیت الہلال جواہر نگر سری نگر اور اقبال نگر سوپور میں مدرس ڈے کے تعلق سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس دوران مقررین نے بہتر سماج وجود میں لانے خاص طور سے بچوں میں اخلاقیات اور نظم و ضبط کے عنصر کو پروان چڑھانے میں ماں کے رول کو اجاگر کیا. اس موقع پر خواتین کو درپیش مختلف مسائل پر بھی روشنی ڈالی گئی. آج ہی ریڈ کراس کا عالمی دن منایا گیا. یہ دن ان لاکھوں رضاکاروں اور عملے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جا رہا ہے جو تحفظ، امداد، صحت کی دیکھ بھال، سماجی امداد اور یکجہتی کے محتاج لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ ہر سال 8 مئی کو بین الاقوامی ریڈ کراس اور ریڈ کرسنٹ موومنٹ کے انسانی کاموں اور اصولوں کے احترام کے لیے منایا جاتا ہے. اور اب آخر پر موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.4 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.6 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. لہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.4 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.